आर्यन की पार्टी के बाद वेद रात को क्लब चला गया था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका और बहुत जल्दी वापस लौट आया। उस अनजान लड़की का इस तरह से अचानक उसकी जिंदगी से चले जाना उसे भीतर तक बेचैन कर रहा था। लेकिन उसकी इस बेचैनी का असर केवल उस पर नहीं बल्कि उसके दुश्मनों पर पड़ रहा था, क्योंकि वेद जब बेचैन होता है तो वो खुद को नहीं बल्कि दूसरों को बर्बाद करता है। उसके क्लब से लौटने के कुछ ही देर बाद किसी का फोन वेदांत को आया। क्या कह रही हो तुम, वो तो रुका ही नहीं क्लब में, इतनी जल्दी चला गया, फोन के उस पार से हैरानी भरी आवाज आई। वेदांत ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ वो तो सीधा निकल गया, जबकि तुम जानती हो जब भी वो क्लब जाता है तो पूरी रात वहीं रुकता है, वहीं तो उसकी अय्याशी का अड्डा है, वहां उसका एक परमानेंट रूम बुक है। तो फिर आज क्या हुआ, तुम्हारा जादू नहीं चला उस पर? उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, उस लड़की की आवाज में झुंझलाहट थी। और तुम कह रही थीं कि वो कभी किसी लड़की को ना नहीं कहता? कोई बात नहीं, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, वेदांत ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। याद है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके करीब जाना है और फिर धीरे धीरे उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे एडिक्ट बनाना है। लड़की ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए वैसा ही होगा। संडे की सुबह, तैयारी और योजना। सुबह संडे थी, ऑफिस का कोई कार्यक्रम नहीं था, लड़कों ने पहले से ही डिजाइनर के पास जाने का प्लान बना रखा था। वेदांत को छोड़कर दीपक, सुधीर और सुधांशु तीनों भाई अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए तैयार थे। वहीं वेदिका, रूपा और मौली, तीनों देवरानी जेठानी भी डिजाइनर के पास जाने वाली थीं। उन्हें भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही ड्रेस ट्राई करनी थी। तभी वेद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आज का क्या प्रोग्राम है आप तीनों का? दीपक ने कहा, भाई आप हमारे साथ चलो ना, आपको भी तो अपनी ड्रेस सिलवानी है। वेद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सोच तो मैं भी यही रहा हूं। सुधांशु हंसते हुए बोला, तो ठीक है सब साथ चलते हैं, फिर देखना बाजार में सबको मेहरा फैमिली के लड़के कितने हैंडसम लगेंगे। उसी समय वेद की माँ वहां आ गई। वेद ने पूछा, मॉम आप मेरे साथ चल रही हैं ना? वेदिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हम तीनों वहीं आ रहे हैं। ठीक है फिर आप लोग अलग गाड़ी से आ जाइए, वेद ने कहा। बाहरी तौर पर वेद शांत दिख रहा था मगर भीतर ही भीतर वो बेहद बेचैन था। वो सिर्फ इसलिए सबके साथ जा रहा था ताकि अपने तनाव से ध्यान हटा सके। बाजार से लौटने के बाद मौली ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतना समय हो गया अभी तक पंडित जी नहीं आए? वेदिका बोली, आज तो पंडित जी को आना था, शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा करनी थी। रूपा ने कहा, हम तो इसीलिए बाजार से जल्दी आ गए ताकि पंडित जी को इंतजार न करना पड़े। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, पंडित जी आ चुके हैं वे बाहर हैं। वेदिका ने कहा, उन्हें अंदर लेकर आओ। पंडित जी के अंदर आते ही तीनों देवरानी जेठानी अपनी जगह से खड़ी हो गईं और उन्हें प्रणाम किया। मौली बोली, पंडित जी आज तो आपने देर कर दी, आप तो जल्दी आने वाले थे। पंडित जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, असल में थोड़ी देर ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए देर हो गई। मौली ने पूछा, आप सारा सामान साथ लाए हैं ना जिसकी पिछली बार बात हुई थी? पंडित जी ने स्नेह से कहा, बहुरानी आप तो बहुत चिंता करती हैं, आपके बेटे की शादी अच्छे से हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। कुछ देर बाद पंडित जी ने सारा सामान उन्हें सौंपा और विस्तार से समझा दिया। नाश्ते के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो वेदिका ने उन्हें रोक लिया, पंडित जी मुझे अपने बेटे वेद की कुंडली दिखानी थी। पंडित जी मुस्कुराए, तो फिर इतनी देर से क्या सोच रही थी बड़ी बहुरानी, मैं देख रही हूं आप किसी उलझन में हैं। वेदिका ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पंडित जी मैं उसके लिए चिंतित रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो शादी करके जीवन में सेटल हो जाए। पंडित जी बोले, उसकी कुंडली तो मैंने पहले ही बनाई थी, क्या वो अब भी आपके पास है? वेदिका ने कहा, हाँ मैंने संभाल कर रखी है, मैं लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में वो कुंडली लेकर आ गई। पंडित जी ने कुंडली को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वेदिका ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ पंडित जी, वो शादी करेगा भी या नहीं? पंडित जी मौन रहे, फिर बोले, छोटी बहुरानी मुझे अपने बेटे के कुछ पुराने कपड़े दीजिए जो वो अब नहीं पहनता, मैं उन्हें हमारी बस्ती में गरीबों में बांट दूंगा, उसकी शादी है उसे दुआएं लगेंगी। मौली उठकर कपड़े लेने चली गई, फिर पंडित जी ने रूपा से भी वही अनुरोध किया, रूपा भी चली गई। अब कमरे में केवल वेदिका और पंडित जी रह गए थे। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुरानी मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है मगर इस कुंडली के अनुसार आपके बेटे की शादी हो चुकी है। वेदिका स्तब्ध रह गई, क्या पंडित जी ध्यान से देखिए उसकी कोई शादी नहीं हुई, अगर होती तो वो लड़की इस घर में होती, हम तो उसकी हर बात मानते हैं, वो जिसे भी लाता हम स्वीकार कर लेते। वो आगे बोली, मगर हाँ 5 साल वो विदेश में था, क्या पता किसी विदेशी लड़की से शादी की हो और फिर तलाक ले लिया हो। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कोई विदेशी नहीं, वो लड़की यहीं भारत की है और कोई तलाक भी नहीं हुआ, कुंडली के अनुसार शादी का योग 5 साल पहले ही बना था। वेदिका की आंखें चिंता से भर गईं, तो फिर?
पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक बात और है, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसकी जान को खतरा है, उसके दुश्मन उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय मौली और रूपा कपड़े लेकर लौट आईं। रूपा ने पूछा, तो पंडित जी वो खतरा कैसे टलेगा? पंडित जी ने दोनों की ओर देखकर कहा, उसकी जिंदगी में दो लड़कियां आएंगी, वही उसे बचाएंगी, ये दोनों लड़कियां उसकी जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी। फिर उन्होंने वेदिका की तरफ देखकर कहा, बहू रानी, आपका बेटा बहुत नसीब वाला है, वो इस घर की भी किस्मत बनकर आया है, उसके आने के बाद इस घर का भाग्य भी चमक गया है और आपका भी। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए, उसने भावुक होकर कहा, ये बात तो सच है पंडित जी, मेरा नसीब तो उसके आने के बाद ही चमका है। सानवी को ये बात अब याद नहीं थी कि इंद्र को रिया ने उसका नंबर किसने दिया था, वो भूल चुकी थी कि उन्होंने पार्टी में मुलाकात के दौरान किसी डॉग सेंटर चलने की बात की थी। आज रविवार था, कॉलेज की छुट्टी तो थी, लेकिन उसे काम पर जाना ही था, सफाई और खाना बनाने के लिए। सुबह वो आराम से उठी ही थी कि अचानक उसका फोन बजा, स्क्रीन पर अनजान नंबर था, उसने संकोच के साथ फोन उठाया। हेलो, कैसी हैं आप? आवाज इंद्र की थी। माफ कीजिए, आप कौन? सानवी ने पूछा, उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी मगर नाम याद नहीं आया। मैं इंद्र बोल रहा हूँ, हम लोग कल पार्टी में मिले थे, डॉग सेंटर चलने की बात हुई थी, इंद्र ने बड़े सहज स्वर में कहा। ओह सॉरी, मुझे आपका नंबर सेव नहीं था, सानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, आज संडे है, चले वहीं, आप कह रही थी कि आपको डॉग्स बहुत पसंद है। इंद्र को किसी भी तरह उसके साथ समय बिताना था। एक पल के लिए सानवी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अगर आप पहले बता देते तो मैं फ्री रहती, मैंने आज का प्लान पहले से बना लिया है, कुछ काम है, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ अकेले जाने की। इंद्र को समझ आ गया कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो बोला, जिस दिन आप फ्री होंगी मैं आपके साथ ही चलूंगा, हम फिर कभी प्लान बना लेंगे। सानवी ने राहत की सांस ली, उसे इंद्र के साथ नहीं जाना था। वेद की जान को किससे खतरा है? वेद की जान को किससे खतरा है? अब सवाल उठता है, आर्यन और सानवी की पहली मुलाकात कैसी होगी?
आपकी प्रतिक्रिया से मुझे अगली कड़ियां और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।